नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आतिथ्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ओयो ने मंगलवार को अपने नए ब्रांड पैलेट की शुरुआत करने के साथ ही प्रीमियम रिजॉर्ट व होटल श्रेणी में उतरने की घोषणा की। इसके तहत कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष की दूसरे तिमाही एक ऐसा कुल 50 संपत्तियों को जोड़ने की योजना है। ओयो की ओर से जारी बयान के अनुसार कंपनी ने जयपुर, हैदराबाद, दीघा, मुंबई, चेन्नई, मानेसर और बेंगलुरु में शुरुआत में 10 पैलेट रिजॉर्ट शुरू किए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरे तिमाही तक ओयो अपने मंच पर 40 और पैलेट रिजॉर्ट जोड़ेगी। कंपनी ने कहा, दिल्ली NCR, कोलकाता, अमृतसर, शिमला, गोवा, उदयपुर, पुणे, मसूरी, श्रीनगर, कोची जैसे गंतव्यों में इसका विस्तार किया जाएगा। इस बारे में ओयो के मुख्य कारोबार अधिकारी अनुज तेजपाल ने कहा, आज लोगों को केवल ठहरने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए होती, बल्कि वे अलग व यादगार अनुभव चाहते हैं। इस प्रवृत्ति ने हमें अपने मंच पर पैलेट ब्रांड पेश करने के लिए प्रेरित किया। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है और इसमें दुर्भावना के चलते समूह को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए थे। उन्होंने मातृभूमि भारत की वृद्धि संभावनाओं और अपने व्यापारिक साम्राज्य के लिए इसके महत्व का भी जिक्र किया। अडानी ने शेयरधारकों की वार्षिक बैठक में कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट उस समय प्रकाशित की जब समूह भारत के इतिहास में सबसे बड़े FPO की योजना बना रहा था। उन्होंने कहा कि समूह की संपत्ति और परिचालन नकदी प्रवाह मजबूत है और उनका समूह अपने कॉरपोरेट प्रशासन तथा प्रकटीकरण मानकों को पूरा करने के लिए आश्वस्त है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट गलत सूचना और बेबुनियाद आरोपों को मिलाकर तैयार की गई थी, जिसमें से ज्यादातर आरोप 2004 से 2015 तक के थे। सेबी गैर कानूनी तरीके से निवेशकों से जुटाई गई राशि की वसूली के लिए 21 अगस्त को सन हेवन एग्रो इंडिया और रवि किरण रियलिटी इंडिया समेत 7 कंपनियों की 15 संपत्तियों की नीलामी करेगा। सेबी ने मंगलवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में ये जानकारी दी। इसके मुताबिक इन्फो केयर इंफ्रा, भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GSHP रियलटेक लिमिटेड, जस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और न्यू लैंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुछ संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। सेबी ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी के लिए 13 करोड़ रुपए का आरक्षित मूल्य रखा गया है। इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल में स्थित जमीनों के अलावा आवासीय इमारत भी शामिल हैं। सेबी के मुताबिक 7 कंपनियों एवं उनके निदेशकों और प्रवर्तकों से संबद्ध संपत्तियों की 21 अगस्त को ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। नियामक ने इच्छुक बोलीकर्ताओं से अपने स्तर पर संपत्तियों के बारे में जांच परख करने को कहा। इन संपत्तियों की नीलामी निवेशकों से गैर कानूनी रूप से जुटाए गए पैसे की वसूली के लिए की जा रही है। एयरफोन व हेडफोन बनाने वाली कंपनी बोट की सूचीबद्धता के लिए जल्दी नहीं है। कंपनी पूर्व में अपनी IPO की योजना को टाल चुकी है। बोट के सह संस्थापक अमन गुप्ता ने कहा कि IPO को लेकर हमें कोई जल्दबाजी नहीं है और इसे अगले वित्त वर्ष 2024-25 या 2025-26 में लाया जा सकता है। गुप्ता ने यह भी कहा कि भारत विनिर्माण के लिए एक आकर्षक स्थल बन गया है। गुप्ता ने PTI भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा कि उनके स्टार्टअप के पास अभी पर्याप्त पूंजी है। गुप्ता ने कहा कि एक समय था जब स्टार्टअप के लिए IPO लाने का फैशन नहीं था। उसके बाद बाजार में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बन गई थी। उन्होंने कहा, हमें अभी IPO की जरूरत नहीं है, हम ये कुछ साल बाद कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 या वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसा किया जा सकता है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। गुप्ता ने कहा, यकीनन इस साल हम ऐसा नहीं करने वाले। वहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप इंडिया और नवाचार महोत्सव जैसे पहल ने देश में उद्यमिता को लेकर नजरिए में बदलाव आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चीन के अपने समकक्ष लियू कुन से मंगलवार को मुलाकात की और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत किए जा सकने वाले कार्यों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय विकास, बैंकों को मजबूत करने तथा वैश्विक ऋण संबंधी समस्याओं से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की। G20 के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक से इतर यहां दोनों मंत्रियों ने यहां मुलाकात की और अपनी अर्थव्यवस्थाओं, मुद्रास्फीति, व्यापार की स्थिति पर चर्चा की तथा आर्थिक वृद्धि व विकास के लिए एक बेहतर कारोबारी वातावरण बनाने पर जोर दिया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया कि मंत्री लियू कुन ने G20 में भारत के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि अभी तक इसमें काफी कुछ हासिल किया गया है। भारत के विमानन बाजार में विशाल क्षमता है, जिसका पूरी तरह दोहन अभी नहीं हो सकता। उद्योग के शीर्ष विशेषज्ञों ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और अधिक यात्रा करने वाली युवा आबादी इसके विकास में योगदान देगी। एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक और रूपांतरण अधिकारी निपुण अग्रवाल ने कहा कि हवाई अड्डों के निजीकरण से विमानन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है और भारत में नए तथा मौजूदा हवाई अड्डों में भी भारी निवेश हो रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।